मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताई जाते भये अरहंता दिमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने बोलिए भगवान महावीर स्वामी की आचार्य कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज
की परम पूज्य मुन्ना श्री क्षमा सागर जी महाराज की मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज की।
हम सभी लोग पिछले दिनों से अपने जीवन को अच्छा बनाने की विभिन्न प्रक्रियाओं पर विचार कर रहे हैं और कर्म तो हमें शुभ और अशुभ दोनों ही बांधना पड़ते हैं, तो क्यों ना हम अपने अनुभव का लाभ लेकर के अशुभ कर्मों को बांधने की प्रक्रिया रोक लेवें। और जैसे ही हम अशुभ कर्मों को बांधने की प्रक्रिया रोकते हैं तो शुभ कर्म ऑटोमेटिकली हमारे साथ बंधने लगते हैं। मजा ये है कि हमें शुभ कर्म बांधने के लिए कुछ अधिक अलग से करना हो ऐसा नहीं है। जब हम अशुभ कर्मों को बांधना रोकने की प्रक्रिया कर लेते हैं, ऐसे परिणाम जिनसे कि अशुभ कर्म ना बंधे, जब हम वैसे परिणाम करते हैं तो वे सब मंद कषाय की अवस्था में होने वाले विशुद्ध परिणाम हमारे अंदर अपने आप शुभ कर्मों को बांधते हैं। एक शुभ कर्म तीर्थंकर नाम कर्म है, वो प्राणी मात्र के प्रति कल्याण की भावना से ही बनता है और दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कारण भावना किसी केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में जब होती हैं तब वो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति बनती है। इस पे हम विचार कर रहे हैं। 16 कारण भावनाएं हमें भी भानी चाहिए, उसमें से हमने सबसे पहले दर्शन विशुद्धि भावना यानी दृष्टि की निर्मलता और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर विनय संपन्नता। विनय तो बहुत प्रकार की है संसार में, लोकानुवृत्ति विनय भी हम हैं, भयभीत होकर के विनय करते हैं, अपने विषयानुराग की वजह से भी विनय कर लेते हैं भैया, और अर्थ उपार्जन के लिए भी बड़ा विनय का व्यवहार करते हैं, लेकिन ये सब लौकिक विनय हैं। वो जो दर्शन ज्ञान चारित्र तप की विनय है और जो पूज्य पुरुष हैं उनके प्रति हमारे मन में जो आदर सम्मान है, वास्तव में वो विनय संपन्नता है। और फिर उसके बाद ज्ञान की भावना में निरंतर लगे रहना और शील और व्रतों के प्रति हमारा निरतिचार पालन हो, ऐसी चार भावनाओं की अपन चर्चा कर चुके हैं। आज जो है वो कहते हैं संसार दुखात नित्य भीरुता संवेगा अवीक्षण ज्ञानोपयोग संवेग। अवीक्षण ज्ञान तो हो गया, निरंतर ज्ञान की भावना, ज्ञान भावनाया नित्य युक्तता, ये तो हो गया अवीक्षण ज्ञानोपयोग। अब कह रहे हैं अवीक्षण संवेग, संसार दुखात नित्य भीरुता, निरंतर संसार के दुखों से डरते रहना, या कहीं कहीं पर सामान्य रूप से कह देते संसार से डरना, तो संसार से डर के जाएंगे कहां? वास्तव में है वो संसार के दुखों से डरना। और दूसरा अर्थ भी है संवेग का कि धर्म और धर्मात्मा के प्रति प्रेम और अनुराग रखना ये भी संवेग है। दोनों चीजें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम संसार से डरेंगे तो संसार के दुखों से डरने का मतलब है कि दुख के कारणों से डरना। जैसे कि रात में हम सब व्यवस्था करके और सोते हैं कैसे चोर के भय की वजह से कि चोर ना घुस जाए, तो इसी तरह से कर्म चोर चहूं और कर्म के चोर मेरे अंदर घुसते रहते हैं इसलिए मेरा संसार बढ़ जाता है। अब मैं क्या करूं जिससे कि कर्म के चोर ना घुसें, मैं ऐसी व्यवस्था कर लूं और साथ में जागृत रहूं। तो संवेग के मायने क्या है? संसार के दुखों से भयभीत होना ये तो बहुत बहुत लोग कर लेंगे, लेकिन दुख के कारणों से बचते रहना यह संवेग की आवश्यकता है। संवेग जो व्यक्ति अपने भीतर जागृत करता, जो संसार के दुखों से डरता है, तो भैया संसार के दुख मिलते कैसे हैं? हमारे अपने परिणाम खराब करने से कर्म बंधते हैं और कर्म हमें संसार में हमेशा भटकाते हैं, आवागमन में वही कारण बनते हैं। तो हम सजग रहें, आचार्य भगवंतों से पूछते हैं कि क्या करें फिर, हम कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे खाएं, कैसे रहें? तो कहते जदम चरे, यत्न पूर्वक ही सब कुछ करो, सावधानी पूर्वक। यत्न पूर्वक माने सावधानी पूर्वक, बड़ी सजगता के साथ। और जो व्यक्ति जितना सजग और प्रयत्नशील होगा वो व्यक्ति उतना आसानी से संसार के दुखों से बच जाएगा। और ये निरंतरता होनी चाहिए, आज थोड़ा सा कर लिया फिर नहीं किया, ऐसा नहीं चलेगा। नित्य नित्य भीरुता, हमेशा सावधान। चलना है तो सावधानी, बोलना है तो सावधानी पूर्वक, सोचना है तो सावधानी पूर्वक। खोटा काय को सोचें, खोटा काय को बोलें, खोटे क्रिया काय को करें, और करना पड़े, मजबूरी हो, कर्म के उदय की बड़ी तीव्रता हो, तब भी अपने अपने लिए अपने वश में रखना, ये जो है बहुत जरूरी है। अपन संक्षेप में यही समझ लें कि संवेग दुख से हमेशा भयभीत रहने की प्रक्रिया है, जिससे हमारे भीतर सजगता बनी रहे कि दुख के कारण उपस्थित होने पर भी तीन चीजें मेरी दृष्टि तत्व की तरफ बनी रहे, मेरे स्वभाव की तरफ बनी रहे, एक चीज। दूसरी चीज मेरी संसार से उदासीनता रहे, और तीसरी चीज कष्ट सहिष्णुता मेरे भीतर आ जाए, सहनशीलता, तब फिर कहलाएगा कि हाँ नित्य भीरुता संसार दुखात, ये हमारे भीतर संवेग आ गया। संवेग सम्यक दृष्टि का आभूषण है, उसका श्रृंगार है संवेग। जिसके भीतर संवेग जितना अधिक है वो उतना उसका सौंदर्य है। हम सबके भीतर भी ये होनी चाहिए। अब संवेग से एकदम समझ में नहीं आएगा तो ऐसा समझ लो कि हमारी अपने स्वभाव की में रुचि है कि नहीं, हमारे अपने कल्याण की रुचि है कि नहीं, संसार से हम उदासीन हुए हैं कि नहीं, संसार शरीर और भोगों के प्रति हम अलिप्त हैं कि नहीं। अलिप्तता के कितने उदाहरण आते हैं, है? कटोरा सिर पर घी तेल से भरा हुआ है और रखवा करके कहा कि जाओ हमारा पूरा महल घूम के आ जाओ, तो पता लग जाएगा हम इतने वैभव के बीच भी कैसे रहते हैं अलिप्त। अलिप्त कौन रह सकता है संसार के बीच, जो कि दुखों से भयभीत है, जिसे मालूम है कि अगर मैं इसमें इंडल्ज होऊंगा, इसमें रचपच जाऊंगा तो और दुख मेरे लिए मैं अपने हाथ से निर्मित कर लूंगा, इसलिए अब मुझे अपने दुख का उपाय नहीं करना, ये दुख के उपाय हैं कि मैं इसमें लिप्त हो जाता हूं। अलिप्तता, तो सारे महल में घूम के आ गए थे लेकिन डर था कि एक बूंद भी नीचे गिरी तो जान चली जाएगी, तो कैसे उस भय की वजह से कितने सजग रहे कि एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए। सजगता आ जाने पर जो वास्तविकता है संसार की वो दिखने लगती, सपना टूट जाता। जैसे कि नींद में और कोई व्यक्ति सपना देखे और सपने में राजपद पायो ओठ मूरख रुदन मचायो, तो अपन भी तो वैसे ही करते हैं, सपने में बहुत सारी चीजें देख लेते। एक राजा जी थे तो उनका बेटा बहुत बीमार था, इतना प्यार था उनका कि उसके सिरहाने बैठे, और उसकी तो जान निकलने को ही है पर सिरहाने बैठे। तीन दिन हो गए, अचानक उनकी नींद लग गई, वहीं झपकी लग गई बैठे बैठे, अब दिन रात दिन से जाग रहे थे बेटे के पास, राजकुमार के पास बेटे, झपकी लगी और उतने में जो है दो ही पांच मिनट नहीं हुए होंगे और रानी ने जगा दिया कि क्या करते हो, सो गए, वो तो उसकी सांस ही गई खत्म। तो उठ करके देखा तो वाकई वो तो चले गया था, उसके तो प्राणांत हो गया था। अब क्या करें, ये थोड़ी देर को तो चुप बैठे और फिर जोर से हंसे, तो रानी ये समझी कि बहुत अधिक दुख की वजह से पागल तो नहीं हो गए, रो लेते तो ठीक था, हंसी आ गई। राजा को तो पूछा कि क्या कारण है, तो कहते कि अब संसार की वास्तविकता समझ में आ गई, इसलिए मैं हंस भी नहीं रहा हूं, मैं रो भी नहीं रहा, तो उस वास्तविकता पर मुझे हंसी आ रही है, अपने ऊपर हंसी आ रही। अब तुम ही बताओ कि जो अभी स्वप्न में देख रहा था उसमें 12 राजकुमार थे और आलीशान वैभव था, और जैसे ही आंख खुली सुबह 12 के 12 कहां चले गए, वो महल कहां चलोगे, अब उनके लाने रोवे और आंख खुले पे जो लड़का चलोगे एक ही लाने रोवे, कौन की लाने रोवे, भी जोन अबे हते जोन स्वप्न में दिखाई पड़ रहे थे वो भी नहीं रहे, और यहां आंख खुली है तो यहां ये भी नहीं रहा। अब तो समझ में आ गया है कि यहां तो सजग हो करके रहना चाहिए, जैसे ही नींद आती है सो बहुत प्रकार के सपनों में अपने स्वरूप को भूल करके नाना रूपों में अपने को देख करके और हम मुग्ध हो जाते हैं, या तो प्रसन्न होते हैं या फिर जो है विषाद कर लेते हैं। वो मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो सब स्थितियों में सहन करना, शांत रहना, सुख के उदय को भी उतना ही सहन करना जितना कि दुख का उदय सहन करते हैं अपन। हाँ, सुख के उदय में भी हर्ष कर लेना, इसका मतलब सहन नहीं हो रहा हो आपसे, सुख नहीं सहन हो रहा हो। हाँ, आपका समझ रहे थे कि दुख सहन तो सबको कर ले, लेकिन सुख के उदय में हर्ष नहीं करना, ये कहलाएगा कि सुख सहन कर लो। जैसे दुख के उपस्थित कारण होने पर अपन उसको विषाद नहीं करते तो समझना कि सहन कर लिया, ऐसे ही जब सुख को कारण मिले तब हमने हर्ष नहीं किया तो समझना कि हाँ हमने अब जो है समता परिणाम या अपने स्वभाव की तरफ, मैंने अपन क्या कहते उसको अपनी भाषा में कि देखो जानो बिगड़ो ने जी, बिगड़ना कहलाता, हर्ष विषाद करना मतलब बिगड़ना। और जो व्यक्ति हर्ष विषाद जितना करेगा उतना अधिक समझना कि संसार बढ़ेगा, भले ही आप संसार से डरत रहो का हो बार, हमें तो संसार से बहुत डर लगत, तो संसार से डर लगत तो भैया वो के कारणों से बचो, जिन कारणों से संसार में दुख है उन कारणों से बचने के लिए हमेशा तत्परता रहे। कोई भी मौका उपस्थित हो तो भैया इसमें अपन को नहीं, ये प्रपंच वाला काम है, इससे अपन दूर हट जाओ, नहीं तो अभी जो है एक नए दुख का कारण मैं अपने आप पैदा कर लूंगा। तो कुल संक्षेप में हमने आपसे कर ली बात, इन्हीं सबको अपन कई बार विचार कर चुके हैं और भी, और एक घटना तो हम सुनाएंगे, वो तो आप उसके बिना कैसे काम चले, तो सब समझ में आ जाएगा। इतना ही सी अपने को ध्यान में रखनी है चीज कि हमें हमेशा सजग रहना चाहिए ताकि जो हमारा स्वभाव है वो हमें हमेशा याद रहे, और जो हमारे स्वभाव से विपरीत हैं, हर्ष विषाद हैं, संसार में सबको लगे हर्ष विषाद, लेकिन उस हर्ष विषाद के बीच में और हम जितना संतोष और जितनी समता जितनी शांति रख सकें वही हमारा संवेग कहलाएगा, वही हमारे संसार से बचने के उपाय के प्रति रुचि कहलाएगी। धर्मो धर्मात्मा में रुचि का मतलब क्या है, धर्म का मतलब अपना स्वभाव, और धर्मात्मा जो अपने स्वभाव की आराधना में लगे हैं, वे सब धर्मात्मा जो अपने उस स्वभाव की प्राप्ति में लगे, जो जितनो राग द्वेष कम करे सो उतनो धर्मात्मा। भैया बस सीधी परिभाषा पंजा बना लो, जिसकी कषाय जितनी मंद वो तो धर्मात्मा, ऐसी परिभाषाएं बना लो तो बहुत आसानी रहेगी। अपन जा सोचते थे कि जोन ने जितनी घंटी बजाई, जोन ने जितनी धारें करी, जोन ने जितनी बड़ी पूजा विस्तारी वो धर्मात्मा, सो जो तो है ही, जी में कछु हर्जा नहीं है, जो तो है ही, मगर अब उसके साथ में अपन जा भी जोड़ लो कि जोन ने जितनी कम कषाय करी उसकी भी पीठ थपथपाओ, भले ही वो और कछु नहीं कर पाओ, मनोपद्रव तो नहीं करो उन्हें और कछु संसार को, इतना ही ठीक है। हाँ, उपद्रव करना मतलब कषाय की तीव्रता, तो कषाय की तीव्रता नहीं हो तो भी जो है हम उसको धर्मात्मा मानकर अपने भीतर भी यही देखें कि हम धर्मात्मा तब हो जाएंगे, लेबल लगाने से धर्मात्मा नहीं होते भैया। सफेद कपड़ा पहरे से धर्मात्मा नहीं हो, तिलक लगाए से धर्मात्मा हो जाते तो सब हो गए होते तिलक वाले। नहीं, हमारे भीतर उस तिलक के साथ साथ जिसको कहते लॉ ऑफ एसोसिएशन, अब भी पंडित जी कह रहे थे, तिलक क्यों लगाया है मैंने, मैं जुड़ गया हूं उस धर्म से, मेरे भीतर भी ठीक वही भगवान का स्मरण निरंतर बना रहे जिनका मैंने तिलक लगाया है। और वो भूल जावे अपन, तिलक लगो रह जावे तो का काम को तिलक जी है और कुछ नहीं। इतना हमारे भीतर भाव बना रहे। मैं वो घटना सुनाऊं उसके पहले, और मुझे एक बात कह देनी, मुझे तो इसके पहले भी पंडित जी कि वो जो संपादित पत्रिका जिन भाषित हम लोगों के सामने ही आचार्य श्री की उपस्थिति में कुंडलपुर में इसको फाइनल किया था, लेकिन मैं सच्ची बताऊं मेरे मन में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि मुझे पत्रिकाओं की ओरिजिनलिटी मालूम है, सब पत्रिकाएं देखी हैं। उन सब पत्रिकाओं में होता क्या है, इनने लिखो ये कालिक्स उनने दाऊ को जवाब, फिर इनने लिखो दूसरों से उनने फिर उनको जवाब, जे ही चलता रहता, या फिर पूरी पत्रिका में समाचार भरे रहे। तुमने अगर 100 रुपया भेज दे तो तुम्हारो समाचार इतनो बड़ो छाप दो, और तुमने अगर नहीं भेज पाए तो इतो एक लाइन में छाप दो। ऐसे समाचार बहुल पत्रिकाएं बहुत हैं अपने अपने हिसाब से छपने वाली, लेकिन उन सबके बीच में और पाठक के लिए और घर बैठे और ये सुविधा उपलब्ध हो जाए कि वो ज्ञान वर्धन कर सके, अपने परिणामों को निर्मल बना सके, अपनी कषाय मंद, जिसको पढ़ करके कषाय मंद हो परिणाम निर्मल होए तो वो लिखो वो कछु काम को। और न तुमने ऐसे लोगों के पहले हमें जोन बातें ने मालूम की भी और मालूम पड़वा दें और राग द्वेष और बढ़ा दिया। तो भैया राग द्वेष बढ़ाने वाली पत्रिकाएं तो बहुत हैं, लेकिन वीतरागता को बढ़ाने वाली अगर पत्रिका निकले तो आनंद आवे। सो हमें आशा तो नहीं थी, लेकिन हमारी आशा से भी अधिक पंडित जी ने और बहुत मेहनत करके अभी 5 से अंक निकले हैं, लेकिन हम अकेले उनके मुंह पर उनकी प्रशंसा करने की दृष्टि से नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे कि हमें पत्रिका पसंद आई, आप खुआए चने आए, बस हमें और नहीं कहना, हमें अच्छी लगी, हमारा अच्छा शब्द ही पर्याप्त। हमसे कोई पूछे कि का आप कहो चाहत पत्रिका के बारे में, तो अभी तक जैसी निकली है वह हमें बहुत अच्छी लगी, और हमें बहुत कम पत्रिकाएं अच्छी लगती हैं, हमें नवनीत भले ही अच्छी लगती, जैन पत्रिका नहीं है, कि कम से कम मंद कषाय तो होती। इसी तरह इसमें भी है, यशपाल जी की कहानी है तो मन निर्मल हो जाता पढ़ करके, अच्छा आलेख निकलता है तो पढ़ के कि देखो इतनी जानकारी, अपना ज्ञान वर्धन भी, ज्ञान वर्धन के साथ साथ वीतरागता आवे तो ही वो श्रेष्ठ है। ऐसी ये जिन भाषित सचमुच लगता है कि जैसे जिनेन्द्र भगवान ने वीतराग वाणी को यहां पर इस तरह से प्रस्तुत किया हो, इसलिए इसको जो है हम आज आपने भी मुझे भजन से हमें बचाओ। हम बैठ जाते यहां फिर किसी को भी बिटिया को मना करो अगर तो उसको भी इंसल्ट जैसा फील हो जाता, और फिर मंच पे एक बार गावो शुरू कर दो तो फिर कचू कह नहीं पाऊ। तो मना करो तो दिक्कत है और सुनो तो दिक्कत है। हम सोनागिर में थे और हमारे साथ में छतरपुर की एक दो परिवार बिहार करते गए थे, सुहारों के बाद आन के बैठी थी और वहां नीचे किसी ने लगाया भजन। अब हमने वो की राख तो सुनी नहीं थी, नौ हमने सिनेमा देखो ने तो नौ ने हमें मालूम हती, सो में बात अच्छी लग रही थी, हम सुन मैंने हमें कोई उससे तकलीफ नहीं हुई, मगर बीजू हमारे सामने सब परिवार बैठा हुआ था, उन बच्चियां भी हैं बेटे भी हैं, सब ऐसा नीचे सिर किए, हम उनसे कुछ बात करें सुबह नीचे सिर करें। हम कहें कि क्या बात हो गई, उतने में उसमें से एक उठा और नीचे जा करके बंद करवाया आया। तो हमने फिर कहा कि क्यों तुम करवाया, कहने हम महाराज जी, तो हमने कहा अच्छा तो बज रहा था। तो फिर सबके मुख पर प्रसन्नता आ गई, क्यों ये प्रसन्नता आ गई कि अच्छो रहो महाराज जी को पता ही नहीं है कि ओरिजिनल का है। मीर थे उनका नाम था, तो वो अपनी बढ़िया शेरवानी पहनते थे और छड़ी हाथ में लेकर के जब रास्ते से निकलते थे बड़े अदब के साथ जो है चलते थे, और उनकी चाल में लोगों ने कभी परिवर्तन नहीं देखा। जैसी चाल चलती थी वैसे ही, चाहे कुछ भी हो। अब कुछ भी हो ये तो नहीं लोगों को मालूम, लेकिन सामान्य रूप से लोगों को यही था कि भैया ये तो अपनी चाल नहीं छोड़ते। और एक दिन ऐसा हुआ कि नौकर दौड़ती दौड़ती आया। मीर साहब अपने शेरवानी पहने हुए और छड़ी हिलाते हुए पूरी अपने जैसे चलना चाहिए रोड पर से वैसे चले जा रहे थे, बड़ी शालीनता के साथ, कोई हड़बड़ नहीं। तो नौकर ने धीरे से कहा कि मीर साहब, मीर साहब ने उसी लहजे में कहा, हुजूर घर में आग लग गई। मीर साहब ने सुना जैसे नहीं सुना, ज्यों के त्यों अपने चले जा रहे हैं। इनने सोचा कि शायद लौटेंगे ये, लेकिन काय को वो लौटे। उसने फिर से कहा कि मीर साहब घर में आग लग गई है। तो उन्होंने हूं कहा। फिर उसके बाद जब उसने तीसरी बार कहा तो मीर साहब को थोड़ी झुंझलाहट तो आई, लेकिन कहने लगे, सुनो घर में तो आग आज लगी है, हम जिंदगी भर से जैसी चाल चल रहे वैसी छोड़ के आज की लगी आंखों बजावे जाएं, हम नहीं छोड़ते अपनी चाल, लगी सो लगी रहे, बताइए आप। हम अपनी जिंदगी भर की जो चाल है जिसको हमने श्रेष्ठ माना है, मैं उस बुरी चाल की बात नहीं कर रहा हूं, जो हमारा अपना स्वभाव है, जो हमारी श्रेष्ठ चाल है, उसको छोड़ करके हम अगर संसार के प्रपंच में हर्ष और विषाद करते हैं तो हमसे ज्यादा जो है कौन अज्ञानी होगा। हमें तो इस उदाहरण को पढ़ करके ये संदेश ले लेना चाहिए कि हम कितनी जल्दी अपनी उस स्वभाव को, अपनी उस चाल को भूल जाते हैं। संसार में जरा सा हर्ष और विषाद का कारण उपस्थित होता है तो हम कितने जल्दी जो है स्वभाव से विचलित हो जाते। भैया संवेग के मायने यही है कि सजग रह करके अपने स्वभाव की तरफ, अपने धर्म की तरफ निरंतर बढ़ते रहना, इसी भावना के साथ कि अपन सब जो है अपने उस आत्मधर्म को प्राप्त करें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता ता सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां, दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अभिनय